आपका प्रातः क्लास है 12 नवंबर 1967 रविवार को रिकॉर्ड चला था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है, किसे पाके पा लिया तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहेंगी, किसे पाके पा लिया या ऊपर को पा लिया, वो ऊपर पाने में आता है, कैसे पाने में आता है वो है? वो कैसे प्राप्त किया जाता है? कहेंगे ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु आया है, तो हमने जान, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बाप कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से, के मेरे तो दो तरह के रथ हैं, मैं मुकरर रथ में मुकरर रूप से आता हूं और बाकी वो मुकरर रथ के अलावा साक्षात अगर देखना है तो थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए नंबर बार और भी ब्रह्मा के मुखों में आता हूं, क्योंकि शास्त्रों में यादगार तो बनी हुई है ना, क्या ब्रह्मा को चार मुख दिखाते हैं, पांच मुख दिखाते हैं, चार मुख तो सदा ही दिखाते हैं। क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि रची जाती है ये जो संसार रचा जाता है, चाहे स्वर्गीय सृष्टि हो या नरक की सृष्टि हो, जो ब्रह्मा द्वारा रची जाती है उसमें जितने भी पार्टधारी आत्माएं हैं वो सब मूल रूप में ज्ञान किसका लेते हैं, कहां से लेते हैं है? कहां से लेते हैं? अरे लिखो भाई, बताओ किससे लेते हैं, प्रैक्टिकल में किससे लेते हैं? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज से ही ज्ञान लेते हैं। कोई कहे हम तो डायरेक्ट आए ज्ञान में, एडवांस में ही आ गए, हमने तो बेसिक नॉलेज ली ही नहीं। अरे तो भी किसी से सुना तो होगा, और जिनसे प्रैक्टिकल में सुना है? नहीं सुना, सुना जिनसे प्रैक्टिकल में सुना उन्होंने कहां से सुना? ब्रह्मा बाबा से ही सुना होगा ना, नहीं तो उन्होंने जहां से सुना उनके गुरु ने कहां से सुना, तो भी कहां पहुंचेंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुखों से सुना। तो सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं, चाहे मनुष्य सृष्टि की बीज रूप बाप की आत्मा ही क्यों न हो, ए टू जेड जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं या देव आत्माएं हैं, ऋषि मुनियों की आत्माएं हैं, वो सब सुनती किससे हैं? ईश्वर का, साक्षात ईश्वर का जो ज्ञान सुनती हैं, वो दादा लेकर आज ब्रह्मा से ही तो सुनती है। तो वो चार मुखों वाला दिखाई दिया, चार मुख संगठित हैं, माना वो चार मुख अगर कहें क्यों मंडली में थे या नहीं थे, वहां भी थे, और जब दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो भी वहां थे, और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण किया तो भी, जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है उसको भी तुम मात पिता हम बालक तेरे, उस माता के जो वाक्य हैं दादा लेखराज वाली आत्मा के सूक्ष्म शरीर जो धारण किया ना गुलजार मोहिनी डारी के द्वारा, तो उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप तो इस सृष्टि पर आते ही हैं। क्या किसके लिए? सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का कल्याण के लिए आते हैं या सिर्फ एक का कल्याण के लिए आते हैं? सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के लिए कल्याण के लिए आते हैं। लेकिन यहां तो बात है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ये गीत तो फिल्मी गीतकारों ने गाया है बंबई में, लेकिन लागू किसके ऊपर होता है? कोई है या नहीं है? हैं? जो कहे हमने जहां पा लिया है, हैं? हमने माने शिव ने भी जहां पा लिया, शिव कहां जहां पाता है? हैं? अभी संगम युग में कह दें शिव बाबा ने पा लिया है, तो शिव बाबा जिसको हम कहते हैं वो तो आत्मा तो शिव की है ना, न कि जो बाबा टाइटलधारी है उसकी आत्मा है। वो जहां पाती है, वो जहां उनको पाने के लिए थोड़े ही आती है, वो तो सारी जहां की जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं उनको सुख मिले, चाहे स्वर्ग की दुनिया में मिले और चाहे जब वो आत्माएं आत्मलोक से उतरती हैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए, तो पहली बार उन्हें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, सुख ही मिलेगा। सभी आत्माओं को पहले जन्म में तो सुख ही मिलता है, तो वो तो इसीलिए आया है इस संसार में। क्या कि सब मेरे जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं, ज्योति बिंदु 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 को तो चाहिए इतना छोटा सूक्ष्म बना दो हैं, तो वो आत्मा निराकार कही जाती है, जो आंखों से देखने में नहीं आती है, वो सभी आत्माएं प्राणी मात्र की इस सृष्टि पर किस लिए आती हैं? सुख लेने के लिए आती हैं। हाँ, तो वो सुख देने के लिए इस सृष्टि को बनाने के लिए ज्ञान देने के लिए आता है। अकूट ज्ञान का भंडारी वो ही एक है आत्मा सुप्रीम सोल, जो कभी भी ज्ञान माने जानकारी सृष्टि की सच्ची सच्ची क्या है उसको भूलती नहीं। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में शरीर में अटैचमेंट में कभी आती नहीं। अटैचमेंट में आएगी तो फिर डिटैच नहीं हो पाएगी, और डिटैच नहीं हो पाएगी तो शरीर से जन्म लेना पड़ेगा, तो वो तो कभी अटैचमेंट में आती नहीं, डिटैच ही रहती, सृष्टि पर आती है। ऐसे नहीं बिंदु फुदक फुदक के पार्ट बजाता है या प्रेरणा देके पार्ट बजाता है। अरे प्रेरणा ही देनी हो तो वो आत्मलोक में बैठे बैठे प्रेरणा दे रहे, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो इस सृष्टि पर आती है तो कोई न कोई उसे मुख चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। क्या ऐसे नहीं कि वो बिना ज्ञान के सदगति हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ, रिते ज्ञानान्न मुक्ति, ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो जिसके लिए यहां बोला तुम्हें पाके हमने जहां पर, वो सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु है, लेकिन पाके का मतलब क्या है? कैसे पा लिया? पाने का मतलब ये है कि बिंदु को पा लिया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हैं हमने बिंदु को पा लिया, कहें कि दादा लेखराज ब्रह्मा में पा लिया, अरे पा लिया, फिर वो चला गया, फिर खो गया, कहीं पकड़ में नहीं आता, आता भी है तो थोड़े समय के लिए कुछ साल के लिए आया फिर गुम हो गया। अभी अभी धीरे धीरे आना बिल्कुल ही बंद हो गया के चल रहा है, नहीं वो तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है तो इस नरक की दुनिया में है कोई सदा काल के लिए पार्ट थोड़ी ही जाती है, है? उनके ऊपर पापों का बोझ चढ़ता है तो ज्यादा बोझा हो जाता है, तो उस बोझे को कम करने के लिए उनका स्थूल शरीर छूट जाता है। तो वो आत्मा जो है सूक्ष्म शरीरधारी पापी आत्मा है, पाप कर्म करने वाली, और पापी तो सभी बनते हैं इस सृष्टि पर, एक मनुष्य आत्मा को छोड़ करके। कौन? जो मुकर्रर रथधारी है, जिसका नाम शास्त्रों में लिखा हुआ है अर्जुन। अर्जुन माने अर्जुन का नाम शास्त्रों में श्वेत भी दिया हुआ है। श्वेत माने एकदम सफेद, धवल। क्या धवल माने? एकदम श्वेत, कोई स्पॉट नहीं पाप का। तो ऐसी आत्मा जो जन्म जन्मांतर इस सृष्टि पर रहती भी है, हीरो पार्टधारी के रूप में पार्टी भी बजाती है, परंतु कोई उसे पहचान नहीं सकता। तो इसलिए वो कह देते हैं कहाँ रहता है, वहां रहता, बहुत ऊंचे पहाड़ पर रहता है, किसी को मिलता नहीं, कोई ऋषि मुनियों को मिलता होगा। तो साधु संन्यासी कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों के साथ चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं सकते, पैसा तो चाहिए वहां जाने के लिए, तो भक्तों का सहारा लेते हैं चले जाते हैं। और लौट के कोई आते हैं, हमने भगवान को पाके देख के आए, हमें शंकर जी महाराज मिले, झूठा ही बोल देते हैं। अरे वो पहाड़ पर बैठने की बात थोड़ी ही है, वो तो आत्मी के ऊंची स्टेज में बैठने की बात है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल बाप जब आते हैं, तो वो आत्मा इस सृष्टि पर जिसे आदम कहा जाता है, हीरो पार्टधारी को, वो आत्मा तन से, मन से, धन से, समय, सारा समय लगाकर संपर्कियों की और संबंधियों की, देह के जो संबंधी होते हैं उनकी पावर लगाकर सिर्फ ईश्वरीय कार्य में ही तल्लीन रहती है। इसलिए उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है इस सृष्टि पर आकर के जो अखूट ज्ञान का भंडार है वो सारी मनुष्य आत्माओं को वितरित करना। उसमें भी जो मूल बात है वो है, तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो सुप्रीम सोल जो इस सृष्टि पर आता है और मुकर्रर रथ भी धारण करता है सदा काल के लिए, जब तक इस सृष्टि पर उसे पार्ट बजाना है। कब तक पार्ट बजाना है? तब तक पार्ट बजाना है जब तक सत्य सनातन देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना न हो जाए। तो कोई के द्वारा ही होगी, धर्म पिता ही चाहिए, धर्म की धारणाओं की धारणा करने वाला पिता चाहिए या नहीं चाहिए? या सिर्फ माता से कम चल जाएगा? नहीं, पिता चाहिए। जितने भी धर्म पिताएं आए इस सृष्टि पर पिता के रूप में आए ना, कि कोई माता के रूप में भी आया, कि क्रिश्चियन धर्म, कि इस्लाम धर्म, कि मुस्लिम धर्म, कि सिख धर्म स्थापन करने के लिए माता के रूप में आया हूं, आया नहीं आया ना, माने पुरुष चोले में ही आता है। क्या? पिता के रूप में। परंतु बताया है, वो आकर के बताए देता है ऐसा कि जितने भी पिता रूपधारी हैं या पिता बनने वाले हैं वो सब पुरुष हैं, दुर्योधन दुशासन। इसलिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए धारणा शक्ति वाली, जो शिव की जो शक्ति है उस शक्ति को जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर सके। तो वो तो कन्याएं माताएं हैं, जो बाप बनने वाले पुरुष चोले में जो शक्ति होती है, चलो स्थूल शक्ति ही होती है वीर की, तो धारण करती है ना। कि कोई पुरुष धारण कर सकता है, है? पुरुष धारण करके बच्चा पैदा कर सकता है? अरे ऐसी तो बातें हो ही नहीं सकती। तो वो धरणी रूपी माता जो है वो चाहिए उसे। अब वो आता है पुरुष तन में, उस पुरुष तन में जो उस मनुष्य सृष्टि का बड़े से बड़ा बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, कि हीरोइन पार्टधारी, हीरो पार्टधारी तो जरूर पुरुष होगा। तो ये गीत जो है उसी आत्मा के लिए उन गीतकारों ने भाव भंगिमा में भर के गाया। क्या? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जान मन सारा विश्व सारी दुनिया पा ली। कैसे पा ली? गाते रहते हैं या सिर्फ अनुभव करते हैं कि पाली है? क्या करते हैं? पाली पाली और अभी भी पाली या अनुभव प्रैक्टिकल में हो रहा है कि नहीं भी पाली, तो ये निश्चित है कि इस षष्टि रूपी रंगमंच पर वही आत्मा अनुभव करती है कि मैं ही पाने वाली अधिकारी हूं उस सुप्रीम सोल बाप से। कौन सा वर्षा? वो वर्षा जो निराकारी आत्मा को निराकारी वर्षा चाहिए। क्या चाहिए? निराकारी वर्षा क्या? अकूट ज्ञान का भंडार चाहिए। तो ये जो गाया है गीत में, तुम्हें पाके हमने जहां पा, लेकिन हमने तो एक को नहीं कहा जाता, हमने तो दो को कहा जाएगा कि एक को कहा जाए। अगर कहें मैंने तो ठीक भी है, यहां तो हमने बोला गया ना। तो हमने का क्या मतलब हुआ? हमने का मतलब ये हुआ कि वो पिता जो है अकेले इस सृष्टि का सुख नहीं भोग सकता, वो पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा। हीरो को भी क्या चाहिए? हीरोइन तो जरूर चाहिए। क्या? इस सृष्टि की जो भी सुख होने भोगने वाली आत्माएं हैं, प्राणी मात्र की आत्माएं, वो अकेले सुख भोगती हैं। अकेला शरीर धारण कर लें, हैं? चाहे देवता का, चाहे ऋषि मुनि मनुष्यों का, चाहे राक्षसों का, और चाहे पशु पक्षियों का, चाहे कीड़े मकोड़ों का, वो अकेले सुख भोग लेंगी, है? अकेले सुख नहीं भोग सकती। तो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में रहकर के अगर सुख भोगना है तो अकेली एक आत्मा अपना अकेले तन के द्वारा सुख भोग सकती है, या उसे कोई दूसरा है एंटी सेक्स वाला शरीर भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो वो है मेल और फीमेल। ये सृष्टि ही मेल फीमेल के द्वारा चलती है। तो परंपरा किसने डाली? ये परंपरा भी शिव सुप्रीम सोला के डालते हैं। कहते हैं कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अगर कोई परम पुरुष कहा जाए, क्या क्या कहा जाए? परम पुरुष। पुरु मने शरीर, श मने सदा शांति में, सदा आनंद में शयन करने वाली आत्मा। तो कौन है सदा? अरे सदा शब्द तो शिव के साथ लगाया जाता है, कि शंकर के साथ लगाया जाता है, कि नारायण या लक्ष्मी के साथ लगाया जाता है, कि विष्णु के साथ लगाया जाता है? नहीं, ऐसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर या एक दो जन्म पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं है जो सदा सुखी रहे। तो वो तो एक ही सुप्रीम सोल है। सोल माने आत्म ज्योति बिंदु निराकार, जो चाहे आत्मलोक में रहे और चाहे इस सृष्टि पर आकर के पतित दुनिया में आके पतित चोले में पार्ट बजाए तो भी क्या कैसी स्टेज में रहेगी? शांत की स्टेज में रहेगी या दुखी रहेगी? नहीं है, वो उद्वेग आएगा उसे, वो उद्वेग में नहीं आ सकती, अशांति में नहीं आ सकती। तो ऐसी आत्मा सुप्रीम सोल शिव उसके लिए कहा गया तुम्हें, लेकिन वो अकेले सुख दे भी नहीं सकता है, तो इसलिए वो उसे सुख देने के लिए, जो आत्मज्ञान का सुख है ना, वो भी देने के लिए उसे दूसरा चाहिए, जो उसके भाव के सदाकाल अनुकूल न हो, कभी न कभी प्रतिकूल होने वाला जरूर होना चाहिए। तो ऐसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो सदाकाल शांत में रहती हो? कोई नहीं। हाँ, सभी आत्माएं सुख और दुख, शांति और अशांति भोगती जरूर, लेकिन जैसे गीता में लिखा है एक तीसरी आत्मा और भी है। क्या दो प्रकार की कैटेगरीज तो हैं दुनिया में है? जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, दो प्रकार की कैटेगरी है, क्षर क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, शक्ति क्षीण करने वाली, और दूसरी अक्षर। हाँ, दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो अक्षर है, अक्षर माने आ माने नहीं, क्षर माने जो पतित नहीं होती। तो ऐसी तो कोई आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो कभी पतित न होती हो। अच्छा चलो, पतित नहीं होती है इस सृष्टि पर, लेकिन कभी पतित हो जाती हो थोड़ा बहुत अंतिम जन्म में, और ज्यादा जन्म में ऊंची स्टेज में रहती हो, दुखदाई स्टेज में न रहती हो। अगर दुखदाई भी किसी को महसूस हो तो उनके लिए महसूस हो जो दुख देने वाले हैं, हैं, और दुख देना छोड़ते ही नहीं, हिंसक हैं। तो अब सुप्रीम सोल शिव को, जो सदा शिव है, उसको कोई हिंसक कहेगा? नहीं कहेगा। तो वो इस सृष्टि पर आता है तो जो भी आत्माएं हैं, कारण अकारण है, हिंसक बनना ही पड़ता है इस सृष्टि पर, नारकीय दुनिया में खास है, दैत्यों की दुनिया में। तो उस सृष्टि में भी कोई ऐसी आत्मा को चुनता है जो आत्मा उस स्टेज को धारण कर सके, ज्ञान को समझ करके, मनन चिंतन मंथन करके उस स्टेज को समझ सके जिस स्टेज में शिव रहता है। कैसी स्टेज? सदा शांत तो रहता है सदा शिव, लेकिन ऐसे टाइम तो कुछ अनुभव कर सकता है कि सदा नहीं, तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक शिव सुप्रीम सोल रहे तो उसमें से कुछ समय तो सदा शांत और सदा सुखमय स्टेज का अनुभव कर सकती है या नहीं कर सकती है? अगर नहीं कर सकती है कहें तो ये बात झूठी हो जाती है कि मैं तुम्हें आप समान बनाने आया हूं। क्या आप समान का मतलब? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनाया हूं, बनाने आया हूं। तो कोई तो आत्मा जरूर होती है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या कुछ न कुछ समय वो वैष्णवी स्टेज में रहे, कैसी विष्णु रवि वैष्णवी स्टेज, विष्णु लोक की स्टेज का अनुभव करे। कैसी स्टेज? जहां लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया जाता है। लक्ष्मी वाली स्त्री चोले की आत्मा जो नारी से लक्ष्मी बनती है, और पुरुष वाली पुरुष चोले की आत्मा जो पुरुष नर से नारायण बनती है। दोनों के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो जाए, क्या ऐसी दोनों ही आत्माएं चाहिए। तो अब वो आता है एक मुकर्रर रथ में कि दो में आता है? दो मुकर्रर रथ में तो नहीं आता। तो जिस एक मुकर्रर रथ में आता है उस मुकर्रर रथ को अखूट ज्ञान का भंडारी बना करके निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में टिका करके उसको बताता है, बच्चे आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे मैंने तुम बच्चों को क्या बनाया? आप समान अखूट ज्ञान धन का भंडारी बनाया या नहीं बनाया? जैसे मैंने तेरे को बनाया मुकर्रर रथधारी को, है ऐसे ही तुम्हारा क्या फर्ज है? फालो खाता करना है कि नहीं? अगर अपन को आत्मा समझते हो तो, आत्मा समझते हो तो आत्मा के बाप को भी समझते होगे। आत्मा का बाप को समझेगा, पहचानेगा, जानेगा, फॉलो करेगा जरूर। तो आप समान बनाना, तो फिर किसे आप समान बनाता है? है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक आत्मा को आप समान बनाता है। एक को बनाता है, किसको? है? हाँ, एक आत्मा को आप समान मैं बनाता हूं, वो तो शिव हुआ। लेकिन शिव जिसको बनाता है मुकर्रर रथधारी को, वो उसका भी तो फर्ज है कि वो भी तो किसी को बनाए। किसको बनाता है? हाँ, लक्ष्मी को बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, है वो किससे पैदा होता है? निमित्त कौन बनता है पैदा करने के लिए? माता निमित्त बनती है ना, है? हाँ, चाहे लौकिक जन्म हो चाहे अलौकिक जन्म हो, क्या माता के रूप में निमित्त जरूर बनना पड़ता है, नहीं बनना पड़ता? हाँ, बच्चा आएगा इस सृष्टि पर तो कहां से आएगा? कौन निमित्त बनता है? है माता। तो जो जो महादेव कही जाती है या आदि नारायण कही जाती है, है या आदम एडम कही जाती है, जो आत्मा सृष्टि का आदि पुरुष है मुकर्रर रथधारी, उसकी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म से संसार में तब ही होता है जब वो स्त्री चोला धारणी माता है उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म दे। क्या? तो दो आत्माएं हो गई ना, एक माता और एक बच्चा, लौकिक जीवन में भी और अलौकिक जीवन में भी। लौकिक जीवन शरीर के द्वारा कहा जाता है और अलौकिक जीवन ये तो मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा के द्वारा। तो बताया कि ये तुम्हें पाके हमने जहां पाया, हमने किसने कहा? है एक ने कहा या दो ने कहा? हाँ, एक नहीं कह सकता हमने, ये तो गलत बात है। हमने माने दो तो कम से कम जरूर होने चाहिए। तो वो दो हैं, हैं कौन? हाँ, लक्ष्मी और नारायण वाली आत्मा, जिनके लिए शास्त्रों में लिखा है भगवान आते हैं तो नर अर्जुन को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाकर जाते हैं। तो अब लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में कोई एक थोड़े ही हुआ होगा, है ऐसे तो नहीं कि वहां एक पीढ़ी ही चलती है देवताओं की? नहीं, वहां भी अनेक पीढ़ियां होती हैं, अनेक जन्म होते हैं। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी गिरावट होगी या सब 16 कला संपूर्ण बच्चे पैदा होते रहेंगे? नहीं, जो भी पीढ़ी आएगी कम कलाओं वाली जन्म लेती जाती है। तो बताया कि वहां सतयुग में भी 8 पीढ़ियां होती हैं, 8 जन्म होते हैं, 8 नारायण जन्म लेते हैं। जो शास्त्रों में लिख दिया है क्या है कृष्ण भगवान के लिए, क्या वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है ना, जो मंदिरों में बच्चे के रूप में दिखाया जाता है बच्चा बुद्धि समझाने के लिए, हाँ उस बच्चे के लिए लिख दिया है। लिखने वाला वही होगा, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी बड़ाई, हाँ अपनी अपनी बड़ाई लिख दी। तो 16 कला संपूर्ण ने अपनी बड़ाई करने के लिए हाँ अपना शास्त्र बनाई दिया, हाँ वो शास्त्र बनाई दिया। तो उन्होंने क्या लिखा उस शास्त्र में है, हाँ कृष्ण भगवान कौन है? गीता का भगवान। गीता किसने सुनाई? कृष्ण भगवान ने सुनाई। कौन से कृष्ण भगवान ने? 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण भगवान। अरे बनने वाला है तो कोई बनाने वाला भी होगा ना, कि अपने आप बन गया? तो बनाने वाले को भूल गए और बनने वाले ने अपने ऊपर टाइटल रख दिया, शिवो हम, मैं ही भगवान हूं, मेरी आत्मा सो ही परमात्मा। इस सच रूपी रंगमंच पर परम पाटधारी परमात्मा मैं हूं। अब उनको देख करके दूसरे देवताओं को भी उचंग चढ़ गई, दूसरी देवात्माओं ने भी अपने अपने, कोई ने नारद पुराण बनाया, कोई ने गणेश पुराण बनाया, कोई ने क्या पुराण बनाया, ढेर सारे शास्त्र बनाए दिए। तो उन सब की बात नहीं है, क्या ये जो गीत है गाने वाले ने गाया है, भाव भंगिया में भर करके बनाया ने, बनाने वाले ने बनाया होगा ना गीतकार ने, तो वो गीतकार तो कवि हुआ ना, कवि को तो विद्वान ही कहा जाता है। तो वो भाव भंगिया में भर करके जो कविता लिखते हैं वो सच्ची सच्ची बात निकलती है मुख से। और उन्होंने लिखा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, लिखा तो उन्हें बेचारे जानते वो भी नहीं है कि हम किसकी ओर से ये गीत गा रहे हैं। तो हमने किसने कहा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ये लक्ष्मी और नारायण इन दोनों की आत्माओं का उद्गार है ये संगम युग का। कोई मुख से गाने की बात नहीं है, ये अंदर अंदर खुशी अनुभव करने की बात है, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करने की बात है। क्या कि जो सुख हम पा रहे हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो सुख इस दुनिया में कोई भी आत्मा नहीं पा सकती। जहान पा लिया है, जहान माने, जहान माने क्राइस्ट की आत्मा कहेगी कि 200-250 करोड़ मनुष्य मात्र हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, जब मैं आती हूं तो वहां से लेकर के इस सृष्टि के अंत तक जब तक महाविनाश हो वो 200-250 करोड़ मनुष्य आत्मा ही मेरा जहान है। उसका जहान कौन सा हुआ? उसकी दुनिया तो वही हुई ना। तो हर एक आत्मा की अपनी अपनी दुनिया, हर आत्मा एक स्टार है। तो ऋषियों मुनियों ने ऊपर के जड़ सितारे जो है ना आसमान के, उनको समझ लिया कि वो जड़ सितारे हैं, वो ही सप्तऋषि हैं, वो ही ध्रुव तारे के रूप में अटल पुरुषार्थ करने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली अटल आत्मा है। अटल आत्मा बने जो कभी पार्ट बजाना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर छोड़ती ही नहीं। कहते हैं सारे सितारे उसका चक्कर काटते हैं। अरे हाँ भाई, ये दुनिया एक रंगमंच है, तो रंगमंच पर जितने भी सितारे हैं पार्ट बजाने वाले पार्टधारी, वो किसके चक्कर आसपास घूमते हैं? हीरो पार्टधारी के आसपास घूमते हैं। तो वो हीरो पार्टधारी जैसा पार्ट बजाने की शिफ्ट और कोई आत्मा रूपी सितारे में नहीं होती, इसलिए वो सितारा बहुत दूर, क्या ये चैतन्य सितारों के मानिंद दिखाया गया है। जो चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं उनमें जो हीरो पार्टधारी आत्मा है जगत पिता आदम एडम अर्जुन, वो आत्मा विश्व का विजय प्राप्त करने वाली एक ही आत्मा है। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी धर्म पिता को फॉलो करने वाली कोई भी धर्म की आत्मा ऐसी नहीं है जो क्या विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में सभी मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है हिंसक बन जाती है, और सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो भी हिंसा को नहीं छोड़ती, कम से कम कामेंद्रिय की हिंसा को नहीं छोड़ेंगे। क्या कोई न कोई के साथ सुख भोगने की इच्छा पूरी करेंगी तो एंटीसेप्स जहां मिलेगा तो वो कन्या होगी, कन्या का शरीर चीड़ फाड़ जरूर करेंगे, करेंगे या नहीं? तो दुख होगा कन्या को या नहीं है? दुख होगा। तो बताया ये काम विकार को ऋषियों मुनियों ने भी सबसे बड़ा शत्रु बताया, गीता में भी बताया भगवान ने, और महात्मा बुद्ध जो भगवान इस दुनिया में एकमात्र भगवान है जो इस नरक की दुनिया में भगवान के रूप में प्रैक्टिकल में देखा हुआ है गाया हुआ है उस धर्म के धर्म पिता के फॉलोअर्स भी देखे जा रहे हैं, वो भी क्या कहता है, वो भी कहता है उसने नाम दिया है मार। काम विकार का नाम क्या दिया? मार। ये मारने वाला है लोगो, तो ये हिंसक सारी दुनिया उसके प्रभाव में आकर बन जाती है। एक ही मनुष्य मात्र की आत्मा इस सृष्टि पर है, जब तक सुप्रीम सोल बाप ना आए तब तक भी वो उस स्टेज में रहती है कि किसी को धर्म के विरुद्ध है काम सुख भोगना है तो उस काम सुख का हिंसक आक्रमण नहीं करना है जिससे दूसरे को दुख महसूस हो जाए। तो अब जब शिव बाप आते हैं तो उसे पता नहीं चलता, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप तो इतनी हल्की फुल्की आत्मा है कि कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता, और मनुष्य आत्माएं तो प्रवेश करती हैं तो झटका लगता है शरीर को है दुख महसूस होता है, जाती हैं तो भी झटका लगता है शरीर को थकाई देती है, लेकिन सुप्रीम सोल तो इतना हल्का फुल्का है सदा शिव इतना हल्का फुल्का है कि जिसमें प्रवेश करता है चाहे मुकर्रतधारी में प्रवेश करे चाहे टेम्परेरी शरीरधारी में प्रवेश करे चार मुखों वाले ब्रह्मा में, लेकिन वो कभी भी किसी को दुख नहीं देता। तो मुकर्रतधारी में भी जब पहले पहले प्रवेश करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कब आया कब गया, तो न पता चलने के कारण वो जो पिछली परंपरा चल रही है ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई शास्त्रों की आत्मा सो परमात्मा, वो अपने को ही आत्मा को ही परमात्मा समझ करके बैठ जाता है, और हाँ संग के रंग से जो भी संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं होती हैं उनकी स्वेच्छा पूर्वक उनको क्या करना शुरू कर देती है क्या करना शुरू कर देती है संग का रंग लगाना शुरू कर देती है। तो पतित का संग लगाएगी या पावन का संग, खुद ही नहीं पावन को पहचाना, एवर प्योर पावन आत्मा जो है सुप्रीम सोल सदाशिव उसको पहचाना नहीं पहचाना, तो दूसरों को संग लगाएगी नहीं लगाएगी, नहीं लगाएगी तो फिर नीचे गिरेगी फेल होगी है ईश्वरीय ज्ञान में फेल होगी या पास होगी। उस मुकर्रर रथधारी के द्वारा भले सुप्रीम सोल आकर के गीता ज्ञान ही सुनाते हैं, क्या गीता के जो श्लोक हैं उन श्लोकों का ही सही अर्थ बताते हैं। ओम मंडली में पहले गीता की व्याख्या दी जाती थी, जो व्याख्या जो विधर्मी आत्माएं है ना, ब्राह्मण कम कला कम कुरियों वाले नीची कुरी वाले ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया, उसे क्लेरिफिकेशन किए, जो पत्ते थे उनको जमीन में गाड़ दिया, शूटिंग कर दी। मुसलमान क्या शूटिंग करते हैं क्या शूटिंग करते हैं? भारत के शास्त्रों को बाड़ों में भून दिया, भारत के शास्त्रों को फाड़ फाड़ के जमीन वो नदी में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया। तो वो तो शूटिंग पीरियड में भी वही शूटिंग करेंगे ना, तो उन्होंने वही शूटिंग कर दी, रिहर्सल कर दी अपनी आत्मा में ऐसा संस्कार, हाँ रिहर्सल के पीरियड में ही धारण कर लिया। अब जैसा रिहर्सल के टाइम पर उन्होंने पार्ट बजाया है, वैसा ही फिर वो ब्रॉड रंग जो रंगमंच रूपी ड्रामा है ना 5000 साल का, उसमें भी वही पार्ट बजाएंगी या दूसरा पार्ट बजाएंगी, वही पार्ट बजाते। तो मूल बात यहाँ गीत में यही समझाई गई क्या कि दो ही आत्माएं हैं जो ये अनुभव कर पाती हैं, एक लक्ष्मी आदि लक्ष्मी और एक आदि नारायण। बाकी बाद वाले जो नारायण है वो तो कम कलाओं वाले होते हैं, उन्हें तो संपूर्ण देवता कहा भी नहीं जा सकता। तो तुम्हें पाके हमने जहान जहान माने 500-700 करोड़ मनुष्य की सृष्टि में हर मनुष्य आत्मा के दिल के ऊपर कंट्रोल करने की शिफ्ट प्राप्त कर ली या नहीं कर ली? कर ली। और फिर आगे बोला, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया है। अरे जमीन स्थूल जमीन को पाके क्या करेंगे? अरे स्थूल जमीन पाने की बात नहीं है, ये तो दुनिया में जड़ चीजें दिखाई गई हैं, जो प्रैक्टिकल सृष्टि है उसको समझाने के लिए, क्या कि पृथ्वी भी है, सागर भी है, नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, झीलें भी हैं, सरोवर भी हैं, छोटे बड़े पोखरे भी हैं, हैं और सितारे भी हैं, उनमें नक्षत्र भी हैं टिमटिमाने वाले, अपने प्रकाश से टिमटिमाने वाले नक्षत्र हैं ना, हाँ, और वो ऐसे सितारे भी हैं जो स्थिर रहते हैं अपनी रोशनी से नहीं टिमटिमा वो प्रकाश देते हैं, जैसे चंद्रमा टिमटिमाता है ऐसे ऐसे टिमटिमाता है नहीं, ऐसे सितारे हैं और सूर्य भी है, तो सूर्य भी है और पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा भी है। तो देखो पृथ्वी माता हुई ना, पृथ्वी माता है और चंद्रमा उसका बच्चा है, क्या हा? तो ये वो जो चंद्रमा बच्चा है वो बच्चा कभी माता की गोद में भी तो रहता है, हाँ, तो माता की गोद में वो माता अनुभव करती है उस बच्चे को। कैसे अनुभव करती है? पेट में अनुभव नहीं करती? अरे पेट में भी तो अनुभव करती होगी, आत्मा प्रवेश करती है, जब निर्जीव पिंड तैयार हो जाता है, शरीर में तैयार होता है ना, पेट में गर्भ में, तो उसमें सोल प्रवेश करती है, तो माता को अनुभव होता है चुर्र कुछ गुड़ कुछ न कुछ होती है, है? हाँ, तो माता अनुभव करती है। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो बेहद की माता है, क्या जगत पिता है तो जगत माता भी होगी कि नहीं होगी? हाँ, वो जगत माता ये अनुभव करती है, क्या के जमीन की तो बात छोड़ दो, ये धरणी रूपी माता की तो बात छोड़ दो, कौन जिसको दिखाया जाता है कामधेनु गाय के रूप में, क्या कामधेनु माने सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय, सीधी साधी, इस नरक की दुनिया का सारा दुख अपने सर के ऊपर ले लेती है, खुद अनुभव करती है और बच्चों को सुख देने के प्रयास में रहती है, ऐसी माता। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भगवान किसके लिए आते हैं, माता के लिए खास आते हैं। माताओं को बहुत दुख मिलता है। क्या जब भगवान आने का टाइम होता है तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर माता चोलाधारी या माताएं जो हैं स्त्री चोला बहुत दुखी हो जाता है। तो सुप्रीम सोल आते हैं, वो माता का दुख हरने के लिए आते हैं, और माता जो है जो धरणी है वो जड़ है, है? जड़ है या प्रकाशित है? जड़ है ना, जड़ तो मई है, और उस पृथ्वी पर पांचों तत्व तो मौजूद हैं या नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब उस पृथ्वी पर मौजूद है। तो वो धरणी माता जो गाय दिखाई जाती है कामधन, उसमें मस्तक में तीनों मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए जाते हैं, और सारे शरीर में हाँ देवताएं भी सब कुछ दिखाया जाता है। तो ऐसे ही है वो धरणी रूपी माता चैतन्य में उसको पालिया या नहीं पालिया? पहले जड़ धरणी के ऊपर राज्य करेगी लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, या पहले जो चैतन्य कामधेनु गैया है या धरणी माता है, पृथ्वी माता है, पृथ्व्यात? क्या पृथ्व्यात बनी चौड़ी होती जाती है, स्वर्ग में तो छोटी होती है, सतयुग त्रेता में कहां होती है? सिर्फ भारत में छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? हाँ, फिर जब ये द्वैतवादी है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मत फैलाने वाले धर्म पिताएं आते हैं, तो उनके पीछे पीछे ढेर की ढेर आत्माएं उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, और बहुत घमासान शुरू हो जाता है, नरक की दुनिया बनना शुरू हो जाता है। तो उन नरों के द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा जिनका मन चलायमान हो जाता है काम विकार के आधार पर, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। क्या उस काम विकार का नाम दे दिया है शास्त्रों में? क्या प्रद्युम्न, प्रमाणे प्रकृष्ट रूप से, द्युम्न माने द्योतित तो होने वाला। उसको कोई कोई प्राणी मात्र उस काम विकार को रोक ही नहीं पाता। कोई रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाता। तो बताया कि वो जो धरणी माता है, जमीन जिसे कहा जाता है, उस जमीन को वो आदि लक्ष्मी ने पहले चैतन्य रूप में पाया होगा, या बोलते चालते रूप में पाया होगा, या जड़ पृथ्वी को पाया होगा? जड़ पृथ्वी बाद में, पहले चैतन्य आत्मा जो है निमित्त है, जिसे कहते हैं पृथ्वी देवी, है धरणी देवी कहते हैं ना, माता कहते हैं ना, हाँ वो देवी के रूप में पार्ट बजाने वाली थी वो आत्मा कभी सतयुग त्रेता। तो वो देवी वाली आत्मा पहले पहले है उसके सामने, किसके सामने, जो आदि लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसके सामने झुक जाती है। माने इससे पहले झुकती है कि नहीं झुकती है, कि लड़ाई करती है? हाँ, वो गाया हुआ है तिरुपति मंदिर में आज भी। क्या कथा कहानियां बनाई हुई हैं? क्या तिरुपति में कहते हैं तिरुपति जी महाराज को दो स्त्रियां थी, दो भारियाएं थी, एक पद्मावती है, पद्मावती माने पद्म माने कमल, कमल के फूल के समान कीचड़ में रहती थी जीवन में, और कीचड़ में रह करके भी मन बुद्धि से हाँ उसी सुप्रीम सोल के मुकर्रर रथ को याद करती थी, है जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके रहता है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाती कि सुप्रीम सोल इसमें। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की बड़े से बड़ी माता है या नंबर वन छोटी माता है, बड़े से बड़ी माता सबसे जाति दुख भोगने वाली है, विकारी दुनिया के विकारी मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ जो दुख है सबसे जास्ती भोगती है या कम भोगती है? सबसे जास्ती भोगती है, फिर भी याद किसको करती है? उस देहधारी आत्मा को याद करती है जो आत्मिक स्थिति में टिकने में और सुप्रीम सोल बाप को याद करने में अव्वल नंबर तीक्ष्ण रूप से है, ऊंची स्टेज में जाती है या नीचे जाती है? ऊंची स्टेज में, जैसे गीता में लिखा है, क्या गीता में भगवान ने कहते हैं ना, व्यास जी महाराज ने क्या व्यास की कृपा से गीता ज्ञान दिया, तो उसमें लिखा हुआ क्या, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादये, आत्मा को मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है हरे, उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाना चाहिए, जबरियन बार बार नीचे आएगा मन बुद्धि, लेकिन फिर भी बार बार उसको जबरियन पकड़ पकड़ के नीचे, वो नीचे से ऊपर ले जाओ। वो धरेत आत्मना, आत्मना माने मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा आत्मानम बिंदु रूप आत्मा को है, ज्योति बिंदु है ना, नहीं ज्योति, ज्योति का बिंदु नहीं है आत्मा, है आंखों से रोशनी कौन सी निकल रही है, उसी ज्योति की आत्मा की रोशनी निकल रही है ना, उसको ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर कहां? आसमान में जहां सितारे लटक रहे हैं? नहीं, ऊपर का मतलब है भ्रकुटी के मध्य में है, ब्रह्मोर मध्य प्राणमावेश्य सम्म, ऐसे लिखा है ना गीता में। तो भ्रकुटी के मध्य में जहां सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके मुकर रूप से पार्ट बजाता है, वहां याद करना चाहिए सुप्रीम सोल बाप को भी वहां बैठता है और वो आत्मा भी मुकर्रर रथधारी वहीं बैठती है। रथ शरीर रूपी एक ही है, एक ही शरीर रूपी रथ में आगे आगे पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा, जिसे शास्त्रों में कृष्ण कह दिया है, कृष्ण को आगे बैठा दिया ना रथ में, हाँ, और पीछे कौन बैठा है? पीछे अर्जुन बैठा है, तो उसको दिखाई दिया। ये रूपक बनाया हुआ है, जो कवियों की भाषा होती है ना, प्रतीकात्मक अलंकार से भरी पूरी भाषा होती है, सबके समझने की भाषा नहीं होती। और इस दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कवि कौन है? सबसे बड़े से बड़ा कवि तो सुप्रीम सोल शिव ही है, उससे बड़ा कवि, उससे बड़ा गीता का गीत ज्ञान का गाने वाला और कोई आत्मा है ही नहीं। तो वो बताता है कि इस गीत का सही अर्थ क्या है, क्या जमीन तो जमीन आसमा पा लिया है, अरे आसमा ऊंचा कि जमीन ऊंची, कौन ऊंचा है? आसमान ऊंचा और जमीन, जमीन तो नीची, क्यों? क्योंकि जमीन के चारों ओर भी सागर बड़ा है कि नहीं? देखने में कौन आता है? सागर देखने में आता है ना, बड़ा बड़ा सागर भी देखने में आता है। जमीन की तो लंबाई चौड़ाई मनुष्यों ने नापी है, ये भी जान लिया कि हाँ गोल है, ऋषि मुनि ने नहीं जान लिया था। और सागर की गहराई को कोई ने जान पाया? नहीं जान पाया कि सागर कितना गहरा। तो वो तो सागर का जो रूप है वो ज्ञान सागर सुप्रीम सोल शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो ही ज्ञान सागर है। क्या सागर में जल भरा होता है ना, तो है ज्ञान जल की बात। तो शिव सुप्रीम सोल आते हैं अकूट ज्ञान का भंडार, तो उस सागर में अकूट ज्ञान जल भर देते हैं। उस अकूट ज्ञान जल के बीच में नई दुनिया रूपी जो भारत है, क्या क्या कहते हैं है? उस समय उसे कहते थे जम्बूद्वीप, तो द्वीप था छोटा, आज की तरह इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, इतने बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं, वो रूप नहीं था। तो बताया किसने बताया, किसने कहा? वही भारत माता ने कहा, जिसे लक्ष्मी का नाम दिया आदि लक्ष्मी, जिसके लिए आज भी भारत के जो कंट्रोलर हैं प्रजातंत्र के सरपरस्त शासक हैं कि नहीं, क्षणभंगुर सुख लेने वाले शासन का, हाँ तो वो भी झंडा उठा के कहते हैं, हाथ में झंडा उठाते हैं और झंडा भारत माता का चित्र दिखाते हैं, उसके हाथ में झंडा दे दिया, कहते हैं भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे माता 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 की जय हो। अरे माता माता तो वो शास्त्रों में वो भी चिल्लाते थे, कौन? मणि और मल्ला। हाँ, लेकिन अंदर एक और बाहर दूसरे, ऊपर से कहेंगे माता माता और माता मिल जाए तो उसकी दुर्गति करना शुरू कर देंगे। हाँ, ऐसी भावना भरी रहती है। तो बताया कि ये जो प्रजातंत्र शासक हैं वो असलियत को नहीं जानते हैं कि भारत माता की जब जय बोलते हैं तो नहीं जानते कि भारत माता विधवा नहीं थी। भारत में विधवाओं की पूजा होती है, विधवाओं की मान्यता है या सधवाओं की मान्यता है? हाँ, भारत माता तो सधवा थी, पति मौजूद रहता है, लेकिन बाप शिव ने ये परंपरा डाली, क्या माता कन्याओं को आगे रखना है और खुद पीछे रहना, तो इसलिए माता को आगे किया तो माता का रूप दिखाई पड़ता है और पिता अपने को गुप्त करके रखता है। देखा, तो बोलते हैं भारत माता की जय। और भी, जब से ये 1250-1200 वर्ष का कलयुग शुरू हुआ, जो महाभारत में भी लिखा हुआ है कलयुग की आयु 1250 वर्ष, तो तब से ये भारत में जो देवियों की पूजा शुरू हो गई। नहीं तो पहले एक बाप की पूजा पुरुष रूप में मान्यता थी, क्या वो थी? अव्यभिचारी भक्ति। 1250 वर्ष का जब कलयुग शुरू हुआ तो ये माता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। क्यों क्यों पूजना शुरू कर दिया? क्योंकि जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर मनुष्य मात्र हैं, वो भले द्वापर युग से आते हैं, नर रूप धारण करके आते तो हैं नरक बनाने के लिए, लेकिन उस समय तो फिर भी सात्विक स्टेज होती है। जब पापी कलयुग की शुरुआत होती है तो तामसी दुनिया बनना शुरू हो जाती है। कलयुग में होता ही है तामस युग, तो वो तामसी मनुष्य आत्माएं जो हैं, वो किसी भी तरीके से पुरुष रूप में सहज सहज सुख दो तो सुख दो तो ठीक, और नहीं मानोगे तो कामेशु क्रोधेशु, काम वासना की आस मार पीट करके भी जरूर पूरी करेंगे, तो ये धंधा शुरू हो जाता है। मुख से कहते हैं देवियों की पूजा, लेकिन जो प्रैक्टिकल में वही देवात्मा है जन्म लेते लेते इस कलयुग के अंत में माताओं के रूप में दुख का पार्ट बजाए रही हैं, दुखी हो रही हैं, जिसके लिए शास्त्रों में है कवियों ने भी लिखा है, माताओं के लिए खास लिखा हुआ, क्या याद है किसी को? कुछ भी नहीं है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। ये जो आधुनिक कवि हैं, उनमें से कोई प्रसिद्ध कवि का गाया हुआ गीत है, क्योंकि कवियों की जो भाषा होती है भाव भंगिमा से हृदय से निकलती है या दिमाग से निकलती है? जो दिमागी होते हैं वो तो बड़े अहंकारी होते हैं, हृदय से जो चीज निकलती है उसमें भगवान वास करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्तों का भगवान। क्या भक्ति माने भावना, श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है तो भगवान को भी कोई पहचान पहचान ही नहीं सकता। तो बताया कि वो जमीन जिसे पृथ्वी माता कहा गया, वो तो उस पृथ्वी माता का रूप है जो देहभान को छोड़ ही नहीं पाती। क्या अव्वल नंबर में कौन छोड़ती है? वो लक्ष्मी की आत्मा जिसे पार्वती भी नाम दिया गया है, पार लगाने वाली। क्या वो पार्वती, पार्वती पति को भी पार लगाती है, वो जब तक न निकले तब तक पार्वती पति भी डुबो डुबो क्या करता रहेगा। हाँ, कम से कम संकल्पों में इस विषय वैतरणी नदी का स्मरण थोड़ा बहुत जरूर करता रहे। तो पार हुआ? पार तो नहीं हुआ। तो वो आती है तब ही पार लगता है। तो जब पुरुष पार लगता है तो पुरुष रूप में पार्ट बजाने वाली जो रुद्रमाला बीज रूप आत्माओं की माला दिखाई जाती है, उसमें जो माला में ऊपर के दो मणके हैं, कौन? एक जगत पिता, एक जगत माता धरणी माता। क्या जगदम्बा, जगत की अम्बा। जगत पिता के साथ जगदम्बा होगी कि नहीं होगी? तो वो जगदम्बा भी है पहचानती है। पहले नहीं पहचानती, पहले तो बस बच्चा ही बच्चा, बच्चा ही बच्चा, बच्चा ही बच्चा। अम्मा है ना फर्स्ट क्लास दुनिया की, अव्वल नंबर अम्मा है कि दो नंबर की अम्मा? अव्वल नंबर अम्मा। तो वो अव्वल नंबर अम्मा तो है, है? जब अव्वल नंबर अम्मा है तो भारत माता का चित्र क्यों दिखाते हैं? धरणी माता का चित्र दिखाना चाहिए, कामधेनु गैया का, जो इसे धरणी पर सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भारत माता का चित्र क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली जो आत्मा है वो तो वास्तव में कौन सी आत्मा है? वही लक्ष्मी की आत्मा है जिसने आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा को षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले बेसिक ज्ञान में जन्म दिया। दिया या नहीं दिया? तो वो बात वाणी में भी आई हुई है। क्या? के अहमदाबाद को क्या कहेंगे? अहमदाबाद को सेंटर को सब सेंटर्स का बीज रूप सेवा केंद्र कहेंगे। अरे गुजरात में तो अहमदाबाद में सबसे बाद में ईश्वरीय सेवा होना शुरू हुई, ईश्वरीय ज्ञान की है? सभी मुख्य मुख्य स्टेट्स में सेंटर्स खुल गए, बाद में अहमदाबाद में खुला। तो सब सेंटर्स का बीज रूप कैसे हो गया? वो स्थूल सेंटरों की बात नहीं है, ये चैतन्य चलता फिरता आत्मा रूपी सेंटर की बात है। क्या कोई आत्मा रूपी गीता पाठशालाओं की बात है, आत्मा रूपी गीता ज्ञान मंदिरों की बात है? हर बात को स्थूल रूप में क्यों पकड़ना चाहिए? तो वो बीज रूप आत्मा जो अहमदाबादी अपने देह रूपी अहंकार को दाबादी सबसे बाद में त्यागती है, तब तक किसी के सामने झुक करके पार्ट बजाने वाली नहीं है। इसलिए मुरली में भी बोला है शिव बाबा ने, क्या कि मैं शिव सुप्रीम सोल सदा शिव तुम बच्चों को नमन नमस्ते करता हूं। क्या ये दादा, क्या ये जो आत्माओं के रूप में पार्ट बजाने वाली है सुप्रीम सोल बाप सुप्रीम सोल शिव का पहला बच्चा आत्मिक रूप में बनता है, वो नहीं झुकता किसी के सामने। क्या पहले नहीं झुकेगा, पहले झुकाएगा बाद में। हाँ, बाद में अगर प्यार करोगे तो झुकेगा, वो भी सच्चा प्यार, झूठा नहीं। कैसा सच्चा प्यार? माम एकम याद करो, मेरे अलावा अगर दूसरे को याद करते रहे, मान लो 24 घंटे 12 घंटा दूसरों को याद किया और 12 घंटा मेरे को याद किया, तो कुछ बचेगा? नील नील बचेगा। तो बताया नंबरवार हैं याद करने वाले। कैसे नंबरवार? हाँ, कोई तो ऐसा भी निकलता है जो 24 घंटे कैसी स्टेज में रहता है, आत्मिक स्टेज में रहने वाला, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है। उसको दिखाते हैं हिरण्यगर्भ के रूप में, जैसे सूर्य निकलता है ना सवेरे को लाल 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 है, ऐसे सारा शरीर जैसे है, जो पांच तत्व हैं वो भी क्या बन जाते हैं, जैसे परमधाम लाल रंग का है, ऐसे परमधाम जैसा लाल 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 हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोने जैसा गर्भ तैयार दिखाई पड़ता है। जो देखे जो सुने उसको ये अनुभव हो कि मेरा सुप्रीम सोल बाप आ गया। तो बताया कि सिर्फ जमीन पाने की बात नहीं है कि वो पृथ्वी रूपी धरणी जगदम्बा को पा लिया है। जगदम्बा वाली आत्मा वो तो पहचानती है श्री देवी को, है किसको? श्री देवी को। लेकिन उनमें दोनों में लड़ाई होती है ना, किस बात की? याद है नहीं? याद है, भूल गए क्या? याद है, श्री देवी कहती है कि प्रैक्टिकल में साकार शरीर से तो तेरे को मिला, मेरे को तो मिला ही नहीं। और श्री देवी ये कहती है, और जो पद्मावती है वो क्या कहती है? अरे मन बुद्धि रूपी आत्मा से तो तेरे ही तरफ उसकी बुद्धि रखी रहती है, है मेरे तरफ तो मुझे महसूस ही नहीं होती। तो ये लड़ाई चलती है दोनों, तो लड़ाई करते हैं। वो कहती है तेरोपति, वो कहती नहीं तेरोपति, फिर वो तेरोपति तेरोपति में लड़ाई ज्यादा पड़ती है। वास्तव में ये दोनों ही धरणी है। क्या? एक है बीज रूप धरणी और एक है कैसी? बीज नहीं है। कैसी है? बीज माने स्थूल बीज कहें तो अलग बात हो जाती है, और सूक्ष्म आत्मा रूपी बीज कहें तो अलग बात होता है। तो दो हैं माताएं, एक जगदम्बा और एक जगदम्बा है तो वास्तव में वो ही लक्ष्मी है जो रामायण में गाई हुई है, सीता ने भी गाई है, जग जननी जय जय उमा जग जननी जय जय। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पृथ्व्यापी विस्तार को पाती है, तो विस्तार को पाने से पहले वो का उसका क्या रूप था? वो थी या नहीं थी? नहीं थी। अरे भारत के रूप में थी या नहीं थी? थी। हाँ थी, लेकिन उसने अपनी जो महत्ता है उस महत्ता को उसमें मर्ज किया हुआ था। किसकी सेवा में? लक्ष्मी की सेवा। तो वो चैतन्य प्रकृति है लेकिन अपरा प्रकृति। अपरा माने परे ते परे वाली नहीं है, थोड़ी नीची स्टेज की है, इसलिए अपरा प्रकृति नाम दिया है गीता में। और परा कौन है? परा वही लक्ष्मी, परे ते परे स्टेज में रहने वाली पराशक्ति। क्या? आत्मशक्ति। कैसी आत्मशक्ति? वो आत्मशक्ति जो अंतिम जन्म में भी ऐसे नहीं है कि पुरुष चोला लेके धारण करती है, और विशिष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर पुरुष चोले का पार्ट ज्यादा बजाती है, नहीं माता का ही सबसे जास्ती पार्ट बजाती है। क्या सबसे जास्ती है? माता के रूप में भी चोला धारण करे और सबसे जास्ती सुख भोगने वाली कोई होगी या नहीं होगी? हाँ होगी, तो वो है आदि लक्ष्मी, जिसे शास्त्रों में पार्वती नाम दिया है अथवा जिसे आदि लक्ष्मी नाम से आज भी नाम रखते हैं, खास करके आंध्र प्रदेश में ढेर सारी कन्याओं माताओं के नाम क्या होंगे? आदि लक्ष्मी, नहीं तो लक्ष्मी नाम तो जरूर होगा। किसकी यादगार? वो ही आत्मा लक्ष्मी आदि लक्ष्मी की यादगार जो सागर के दिल से नजदीक रहती है। क्या दिल की दुआएं किसके प्रति निकलती है? दिल की दुआएं उसी के प्रति निकलती हैं जो जिसके नजदीक सारा आंध्र प्रदेश स्टेट से भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे जास्ती किनारा लंबा चौड़ा कौन से स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का। सोच लो अच्छी तरह से, कोई हो तो बता दो। हाँ बताओ, काटो, काटने पर ही लगे हुए हो बैठे, तुम्हारा धंधा ही ये है। हाँ गुजरात, गुजरात का लंबा लंबा चौड़ा है तो छोटा गुजरात नाप करके कभी देखा है क्या? अनुमान से ही बता दिया। हाँ बताओ, दिखाओ उसका बॉर्डर, दिखाओ समंदर का बॉर्डर निकालो अपने, वो जिसका तुम्हें ज्यादा अनुमान है, क्या नाम क्या घमंड है मोबाइल का, निकालो निकालो। अरे ये भी ज्ञान है, चल रहा है। नहीं निकालेंगे, क्यों क्यों नहीं निकालेंगे? अरे भाई देखने में भी आ रहा है प्रत्यक्ष, आंध्रा का जितना लंबा चौड़ा बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर और किसी भी स्टेट का नहीं। स्टेट तो वो गुजरात इतना छोटा है, है? भले टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है, उस हिसाब से कोई कहे कि बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन सागर की जो जो गहराई है ना, वो गहराई क्या गुजरात के पास होगी? जिसे कच्छ कहा जाता है, उथला सागर है या गहरा सागर है? अरे लिख के बताओ, कुछ पता नहीं चलता क्या बता रहे हैं? उसके नजदीक उथला सागर है या गहरा सागर है? उथला सागर। वास्तव में जो गहराई है हिंद महासागर की, वो अरब महासागर की तो गहराई उतनी हो ही नहीं सकती। अरब महासागर माने इस्लामियों का सागर या भारत की जो आत्माएं हैं, देव आत्माएं बनती हैं, जो बाद में अपन को हिंदू कहलाती हैं, उनका सागर? किनका सागर है? किनका सागर? हाँ कहेंगे इस्लामियों का सागर, अरब का सागर। आ रब, आ माने नहीं, रब माने कोई रब होता ही नहीं प्रैक्टिकल में। अगर कोई रब इस दुनिया में होता है तो वो तो हम धर्म पिताएं ही हैं रब, इस दुनिया के बड़े से बड़े रब। हाँ और कोई नहीं हो सकता। तो वो अरब सागर है वो उतना गहरा नहीं हो सकता जितनी गहराई और जितनी नदियां बहुत ज्यादा पवित्र बनाने वाली नदियां हिंद महासागर से मिलती हैं, सागर से उतनी पवित्र नदियां कहां नहीं मिल सकती? अरब सागर में नहीं मिल सकती। तो बताया जमीन तो जमीन आसमा पा लिया है का मतलब क्या हुआ? कि वो जगदम्बा रूपी जो ब्रॉड रूप में विस्तार रूप में माता कही जाती है वो तो पा ही ली। क्या वो तो झुक ही जाती है, लेकिन उससे भी ऊंची एक शक्ति और है, है? जिसके प्रति वो माता सारा जीवन समर्पित होकर के जीवन बिताती है। बता माता के लिए इस दुनिया में कौन सा संबंध होता है जिसके प्रति वो जीवन भर झुक करके पाठ बजाता है? कौन होता है, कोई संबंध होता है कि नहीं? भूल गए, अरे एक अक्षर नहीं लिख पाते, पति होता है सारा जीवन, बच्चा पैदा हो जाए तो भी है? बच्चे को महत्व देती है कि पति को महत्व देती है, किसको महत्व देती है? है बच्चे को महत्व देती है। तो बताए, और उसमें भी जो बड़ा बच्चा है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चतुर्युगी में पार्ट बजाने वाली आत्मा, उस बच्चे को जान मारी कर करके भी महत्व देती। तो देखो वो जो ब्रह्मा बच्चा है ना, वो ही वास्तव में क्या है, इस सारी पृथ्वी को है, सारे सागर को है, सारी नदियों को, सारे पहाड़ों को, सारे जलाशयों को, नहरों को, सबको घेर करके रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता। हाँ, उसे वायुमंडल नाम दे दो, उसे वातावरण नाम दे दो, ढेर सारे नाम दे दिए हैं, आकाश नाम दे दो है। तो बताया जमीन तो जमी आसमा पा लिया है, पांच तत्व है ना, कौन कौन से पांच तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हाँ, तो वो आकाश पृथ्वी को पता ही नहीं है कि वो आकाश तो तेरे गर्भ में से ही प्रत्यक्ष होता है। कहां से प्रत्यक्ष होता है वो? कृष्ण जो है वो कहां से प्रत्यक्ष होता है? है तब ही प्रत्यक्ष हो सकता है जब जगदम्बा और जो भारत माता है महालक्ष्मी बन करके, क्या दो मिलते हैं तो महालक्ष्मी, दो ब्राह्मण मिलते हैं नीच और ऊंच तो महाब्राह्मण, दो विष्णु रूप आत्माएं मिलती हैं तो कहते हैं महाविष्णु। महाशब्द लगाया ही तब जाता है, नीच ते नीच और ऊंच ते ऊंच दोनों मिलकर के एक हो तो महाशब्द लग जाता है। तो वो महान जो पार्ट बजाने वाली महाविष्णु की आत्मा है वो कौन सी कही जाएगी, जिसमें विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली माताएं भी शामिल हैं? है दोनों माताएं खास, कौन कौन सी? जगदम्बा और भारत माता, पृथ्वी माता और भारत माता, और तीसरी, तीसरी वो नदी जिसे गुप्त नदी दिखाते हैं। क्या ओम मंडली में भी आदि में भी गुप्त थी और बीच में भी चली गई, गुप्त हो गई, कौन? सरस्वती। क्या क्या नाम दिया? सरस्वती। सरस्वती माना किसकी बेटी? दादा लेखराज ब्रह्मा की बेटी है ना। हाँ, तो उसका सहयोग लेकर के, क्योंकि वो ही फॉलोअर बनती है पक्का पक्का। दादा लेखराज ब्रह्मा का कोई फॉलोअर ज्ञान में और बनता है पहले पहले? कोई नहीं बनता। तो उसका आधार लेकर के है माता के रूप में वो ब्राह्मणों की सृष्टि रचना शुरू करते हैं। तो वो भी स्त्री चोला, तो ये तीन माताएं हो गई स्त्री चोला धारणी, और दो पुरुष हो गए, एक दादा लेखराज ब्रह्मा सोलह कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा जो सत्युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, और दूसरी वो आत्मा जो उस कृष्ण को भी जन्म देने वाला जगत पिता महादेव कहा जाता है। माने सोलह कला संपूर्ण जो बनने वाले नारायण है नंबरवार या कम कलाओं वाले, उन सब का पितर, उससे ऊंचा कोई पितर है नहीं। हाँ, तो वो पितरों की पूजा करते हैं लोग आज भी है? कहां गया? गया सृष्टि के आदि में ही गया। कहां गया? ऊंचे से ऊंची स्टेज में गया। तो गया में बड़ा भारी तीर्थ स्थान बना दिया है, है? पितरों की पूजा करने के लिए। ओम शांति।